डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट लिटरेचर, व्याख्यान 29, इब्रानियों और जेम्स 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं, इब्रानियों और जेम्स पर व्याख्यान 29। पिछली कक्षा की अवधि, मुझे लगता है कि हम समाप्त हो गए हैं। जैसा कि आप अपने पाठ्यक्रम में महसूस करते हैं, कई स्थानों पर हमारे पास वास्तव में एक भ्रमण है जहां मैं उस विषय पर बात करता हूं जो उस पुस्तक के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसकी जड़ें पुराने नियम में हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर हम अगली किताब की ओर भी बढ़ेंगे जो जेम्स है। ठीक है, आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। पिता, हम आपको इस दिन और एक नए सप्ताह के लिए धन्यवाद देते हैं। और फिर जैसे जैसे सेमेस्टर का अंत करीब आता है, हम उस बिंदु तक पहुंचने और हमें जो कुछ भी चाहिए उसे पूरा करने के लिए आपकी सक्षमता और सहायता मांगते हैं। पिता, मैं अब प्रार्थना करता हूं कि हम स्पष्ट रूप से और आलोचनात्मक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उस बारे में सोच पाएंगे जो हमारे लिए आपके रहस्योद्घाटन से कम नहीं है। जैसा कि हम उसके केवल एक भाग के बारे में सोचते हैं, हमें यह समझने में सक्षम होने में मदद करें कि आप अपने पहले पाठक से क्या संवाद करना चाहते थे, ताकि हम यह समझने के लिए उस अंतर को पाटने के लिए तैयार हो सकें कि आपका शब्द आज भी हमें आपके लोगों के रूप में कैसे संबोधित करता है। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। ठीक है, नई वाचा। मैंने आपको पिछली कक्षा की अवधि में सुझाव दिया था कि वास्तव में वाचा का विषय उत्पत्ति के अध्याय 1 और 2 में सृष्टि से शुरू होता है, जहां आदम और हव्वा के साथ भगवान का संबंध एक वाचा पर आधारित है जिसे वह उनके साथ स्थापित करता है। इसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट, एक अर्थ में ओल्ड टेस्टामेंट का बाकी हिस्सा अनुबंधों की एक श्रृंखला के आसपास संरचित है जिसे ईश्वर अपने लोगों के साथ स्थापित करता है, क्योंकि वह सृष्टि की शुरुआत से अपने रिश्ते को बहाल करने का प्रयास करता है लेकिन पाप के कारण विफल हो जाता है। हालांकि पुराना नियम ईश्वर की भविष्यवाणी के साथ समाप्त होता है, भविष्यवक्ताओं की यह आशा है कि ईश्वर एक दिन एक नई वाचा का संबंध स्थापित करेगा जो उसके लोगों के साथ उसके रिश्ते की संरचना और निर्धारण करेगा, और उस वाचा संबंध को पुराने नियम के कई ग्रंथों में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए ग्रंथों में से एक यिर्मयाह अध्याय 31 है, जो वास्तव में इब्रानियों की पुस्तक में उद्धृत किया गया है जिसे हमने अभी देखा है, जहां लेखक स्पष्ट है कि भगवान ने यिर्मयाह 31 में जिस नई वाचा का वादा किया था उसका अब उद्घाटन और पूरा हो गया है, यीशु मसीह का व्यक्ति। लेकिन अन्य भविष्य सूचक ग्रंथ, यहां तक कि वे जो वाचा या नई वाचा शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, वे भी एक नए वाचा संबंध की स्थापना की आशा करते हैं जो अपनी रचना के लिए भगवान के इरादे और अपने लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के उनके इरादे को बहाल करेगा जहां वह निवास करेगा एक बार फिर उनके साथ। वे उसके लोग होंगे और वह उनका परमेश्वर होगा। यिर्मयाह में से एक, मुझे खेद है, ईजेकील अध्याय 37, हालांकि यह वाचा शब्द का उपयोग नहीं करता है, यह स्पष्ट रूप से अपने लोगों के साथ भगवान के वाचा संबंध की स्थापना का तात्पर्य और अनुमान लगाता है और इसमें वाचा संबंध के सभी तत्व हैं। तो शुरू करते हुए, यह अध्याय 36 है और भगवान अपने भविष्यवक्ता के माध्यम से अपने लोगों से बात कर रहे हैं और एक ऐसे दिन की आशा कर रहे हैं जब भगवान अपने लोगों को खुद के साथ रिश्ते में बहाल करेंगे। वह इससे आरंभ करता है कि मैं तुमको इसराइल की ओर संकेत करके अन्य जातियों में से ले लूंगा और सब देशों में से इकट्ठा करके तुम्हारे निज देश में ले आऊंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम अपनी सारी अशुद्धता से शुद्ध हो जाओगे और अपनी सब मूर्तों से शुद्ध हो जाओगे। मैं तुझे एक नया हृदय दूंगा, मैं तेरे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तेरे शरीर में से पत्थर का हृदय निकालकर तुझे मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर समवाऊंगा और तुमसे मेरी विधियों पर चलूंगा और विधियों के मानने में चौकसी करूंगा। तब तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया है और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अस्वच्छता आदि आदि से बचाऊंगा। तो यह यहेजकेल की नई वाचा का संस्करण है। इसलिए जब किसी ने पूछा कि नई वाचा क्यों, तो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ जो पिछली वाचा संबंध स्थापित किए थे उनकी तुलना में नई वाचा में इतना नया क्या है। सबसे पहले परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक नए रिश्ते का वादा करता है। अब परमेश्वर के ज्ञान की मध्यस्थता नहीं की जाएगी और यह यिर्मयाह अध्याय 31 में विशेष रूप से स्पष्ट है। अब ईश्वर के ज्ञान की मध्यस्थता या ईश्वर की उपस्थिति की मध्यस्थता नहीं की जाएगी, बल्कि अब ईश्वर के लोगों द्वारा सीधे अनुभव किया जाएगा। दूसरा, पापों की पूर्ण क्षमा। तो आपने यहेजकेल में भी उस भाषा पर गौर किया है कि परमेश्वर ने उन्हें शुद्ध हृदय दिया और परमेश्वर ने उन्हें शुद्ध किया और उन्हें उनकी अशुद्धता और उनकी मूर्ति पूजा से माफ कर दिया। वही चीजें जो उन्हें निर्वासन में ले गईं, सबसे पहले इसराइल के राष्ट्र को निर्वासन में ले गए, परमेश्वर अब पाप से पूरी तरह निपटेगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी वाचा का रिश्ता पाप से बिल्कुल भी नहीं निपटता था, लेकिन अब ईश्वर एक अंतिम शुद्धिकरण की आशा करता है जिसे वह इस नई वाचा को स्थापित करके लागू करेगा। तो पापों की पूर्ण क्षमा और अंत में भगवान के कानून का पालन करने की क्षमता। यह तथ्य कि भगवान कहते हैं, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा, मैं तुम्हें अपने नियमों और आज्ञाओं का पालन करने में सक्षम बनाऊंगा या पैदा करूंगा। इसलिए अब नई वाचा के साथ ईश्वर स्वयं अपने लोगों को अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए सक्षमता और प्रेरणा प्रदान करेगा, जबकि पहली वाचा के विपरीत, जिसे इसराइल ने अवज्ञा की, जिसके कारण उन्हें फिर से निर्वासन में समाप्त होना पड़ा। तो कम से कम ये बातें इस नई वाचा की स्थापना के साथ जो नया है उसके केंद्र में प्रतीत होती हैं, जिसके बारे में हम यिर्मयाह और यहेजकेल में पढ़ते हैं। अब एक बात याद रखना महत्वपूर्ण है, जब हम नए नियम पर आते हैं तो भगवान के लोगों को मिलने वाले मोक्ष के सभी आशीर्वाद या लाभ पूरी तरह से नई वाचा से जुड़े होते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं, मेरी राय में, जैसा कि मैंने पहले कहा है, जब भी नए नियम के लेखक पवित्र आत्मा का उल्लेख करते हैं और पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, तो वह वाचा का हिस्सा है। फिर से यहेजकेल अध्याय 36, जिसे हमने अभी पढ़ा है, वादा करता है कि परमेश्वर वादा करता है कि वह अपने लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलेगा, वह उन्हें अपनी आत्मा देगा। इसलिए जब हम सोचते हैं, और यहाँ तक कि उस भाषा के बारे में भी सोचते हैं जिसे हम नए नियम में पढ़ते हैं और आज हम कैसे बात करते हैं, तो हम आत्मा से भरे होने या आत्मा प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं, या पॉल आत्मा से बपतिस्मा लेने की भाषा का उपयोग करता है, या आत्मा से मुहर बंद किया जा रहा है। यह सब पुरानी नई वाचा पर वापस चला जाता है। तो अपने लोगों के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति, भगवान के लोगों द्वारा पवित्र आत्मा का स्वागत आज चर्च नई वाचा से जुड़ा हुआ है। मसीह के प्रति आज्ञाकारिता, जब हम मोक्ष के बारे में या विश्वास द्वारा उचित ठहराए जाने के बारे में बात करते हैं, तो मोक्ष के आशीर्वाद को संदर्भित करने के लिए नए नियम में हम जो भी भाषा का उपयोग करते हैं या पाते हैं, वे सभी नई वाचा के मोक्ष से जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में, हम उस नई वाचा के अलावा मुक्ति के आशीर्वाद का आनंद नहीं लेते हैं जिसका उद्घाटन यीशु मसीह ने अब किया है। इसलिए यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लाभ, जब हम मोक्ष, औचित्य, मुक्ति, आत्मा को प्राप्त करना, मसीह के प्रति आज्ञाकारिता के बारे में बात करते हैं, वह सभी भाषा जो हम नए नियम से उपयोग करते हैं, वह सब वापस चला जाता है और सभी नई वाचा की पूर्ति में बंध जाता है। नई वाचा के तहत परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ जो वाचा का वादा किया है उसके उद्घाटन और उसकी पूर्ति के अलावा कोई मुक्ति नहीं है। अब नई वाचा भी पहले से ही लेकिन अभी तक नहीं बनी संरचना में भाग लेती है जिसे हमने नए नियम में देखा है। ईश्वर के राज्य में वापस जाते हुए मैथ्यू के सुसमाचार में हमने राज्य के विषय के बारे में थोड़ी बात की, जहां भविष्य का राज्य जब ईश्वर इतिहास पर आक्रमण करेगा और उसका शासन इतिहास में टूट जाएगा और बुराई की शक्ति को हरा देगा, और जहां ईश्वर की संप्रभुता को पूरी तरह से स्वीकार किया जाएगा और उसका शासन पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। यीशु मसीह पहले से ही उस राज्य का उद्घाटन करते हैं ताकि पुरुष और महिलाएं ईश्वर के शासन का अनुभव कर सकें और पहले से ही ईश्वर के शासन में प्रवेश कर सकें। फिर भी अभी तक कोई पहलू नहीं है, राज्य अभी तक अपनी पूर्णता में नहीं आया है। बुराई की शक्तियों और परमेश्वर के राज्य का विरोध करने वाली शक्तियों को पूरी तरह से मिटाने के लिए परमेश्वर का राज्य अभी तक पूरी ताकत से नहीं आया है। तो भगवान का राज्य पहले से ही मौजूद है। तो यीशु कह सकते हैं, यदि मैं शैतान की शक्ति से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ऊपर है। फिर भी वह अभी भी ऐसे बात कर सकता है जैसे कि राज्य अभी भविष्य की कोई चीज है, और यह परमेश्वर का राज्य पहले ही आ चुका है और इसका उद्घाटन हो चुका है, फिर भी यह अभी तक अपनी संपूर्णता में नहीं आया है। नई सृष्टि पहले से ही मौजूद है। पॉल कह सकता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह व्यक्ति एक नई सृष्टि का हिस्सा है। फिर भी नई रचना अभी तक नहीं आई है। यही बात अनुबंध के बारे में भी सच है। नई वाचा का उद्घाटन पहले ही हो चुका है, फिर भी भविष्य में इसका पूर्ण रूप से उद्घाटन होना बाकी है। इसलिए उदाहरण के लिए जिस पुस्तक को हम देख रहे हैं, इब्रानियों अध्याय आठ में हम नई वाचा का पहले से ही पहलू पाते हैं। इब्रानियों के लेखक को विश्वास है कि यीशु मसीह ने पहले ही इस नई वाचा का उद्घाटन कर दिया है जो ईश्वर के साथ एक नया तत्काल संबंध लाता है। एक वाचा जो पूरी तरह से पापों से संबंधित है और पापों को पूरी तरह से माफ कर देती है। एक वाचा जो अब पवित्र आत्मा और परमेश्वर के कानून का पालन करने की क्षमता लाती है। उस वाचा का उद्घाटन अब यीशु मसीह के आगमन के माध्यम से किया गया है। हालांकि मैं नए नियम के बिल्कुल अंत तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और श्लोक 3 तक जा सकता हूं, जो एक विस्तृत दृष्टि का एक हिस्सा है। उम्मीद है कि सेमेस्टर के अंत में हमें इस बारे में और अधिक बात करने का समय मिलेगा, लेकिन अध्याय 21 और पद 3 में मैं चाहता हूं कि आप अनुबंध की भाषा पर ध्यान दें। वास्तव में यह भाषा इजेकील 37 से निकली है, जिस अनुभाग से हम अभी पढ़ रहे हैं। लेखक कहता है, मैंने सिंहासन से एक तेज आवाज सुनी, और यह जॉन की अभी तक की दृष्टि नहीं है। अभी नहीं, एस्केटन आ गया है। और यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का निवास मनुष्य में है, वह उनके साथ निवास करेगा, वे उसके लोग होंगे और वह उनका परमेश्वर होगा, भगवान स्वयं उनके साथ रहेंगे। वह वाचा की भाषा है। फिर वे उसके लोग होंगे और वह उनका परमेश्वर होगा। अब जॉन देखता है कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक में यह पूर्ण हो गया है और अपने पूर्ण चरमोत्कर्ष और पूर्णता पर पहुंच गया है। तो नई वाचा मोक्ष के अधिकांश अन्य आशीर्वादों की तरह पहले से ही इसमें भाग लेती है, लेकिन अभी तक संरचना में नहीं। अंतिम पूर्णता और परम नई सृष्टि की अंतिम अभिव्यक्ति से पहले ही उनका उद्घाटन ईसा मसीह के प्रथम आगमन के साथ किया जा चुका है। तो फिर इसीलिए आप पाएंगे पवित्र आत्मा के साथ भी आपको ऐसी भाषा मिलेगी जैसे पॉल आपको बताएगा, पवित्र आत्मा हमारी अंतिम मुक्ति का अग्रिम भुगतान है। यह पहले से ही है, लेकिन अभी तक संरचना नहीं है। तो नए, हमने पहले से ही नई वाचा के सभी आशीर्वादों का अनुभव किया है, जिससे मुक्ति के सभी आशीर्वाद जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका उद्घाटन पहले ही मसीह में किया जा चुका है। फिर भी यह केवल उसकी अंतिम पूर्ति की प्रत्याशा का एक अग्रिम भुगतान है जो अभी आना बाकी है। ठीक है, एक तरह से एक और भ्रमण करने के लिए, हालांकि यह आपके नोट्स में नहीं है, कम से कम न्यू टेस्टामेंट के साथ मैं आपके लिए बहुत सारी तारीखें सीखने में वास्तव में बड़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश चीजें लगभग 40 या 50 साल की अवधि में घटित होती हैं, शायद 60 साल की अवधि में, कम से कम पुस्तक के लेखन घटनाओं में। निस्संदेह घटनाएं बहुत पहले की हैं, जो ईसा मसीह के जन्म से शुरू होती हैं। इसलिए मैंने आपको बहुत सारी तारीखें नहीं सिखाई, क्योंकि यदि आपने पहली शताब्दी का अनुमान लगाया है तो आप लगभग हर चीज पर सही होंगे, लेकिन कभी कभी हमें उससे भी अधिक सटीक होने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि तारीखें महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक तारीख है जिसे आपको जानना आवश्यक है, और वह है 70 ईस्वी या 70 सी सामान्य युग। और क्या कोई जानता है कि मैंने उस तारीख का उल्लेख क्यों किया? मंदिर का विध्वंस। यरूशलेम में मंदिर का विनाश 70 ईस्वी में हुआ था। तो संघर्ष, याद रखें, 63 ईसा पूर्व में रोम एक ऐसी शक्ति बन गया जिसने एक बार फिर विदेशी प्रभाव में यरूशलेम और पूरे यहूदिया को अपने अधीन कर लिया, जब इसराइल ने बहुत ही कम समय के लिए स्वतंत्रता का आनंद लिया। लेकिन अब आखिरकार चीजें चरम पर आ गईं, और 70 ईस्वी या 70 ईस्वी में यरूशलेम एक बार फिर नष्ट हो गया, और रोम अंदर जाता है और शहर को तबाह कर देता है, और यह इसराइल के इतिहास में एक चरमोत्कर्ष और निर्णायक मोड़ था, शाब्दिक रूप से भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस तारीख को पहचानें। अक्सर, उदाहरण के लिए, इब्रानियों की किताब एक ऐसी किताब है जहां कुछ लोग सुझाव देते हैं कि क्योंकि इब्रानियों में मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि इब्रानियों को भगवान के निवास और बलिदान और उच्च पुजारी में रुचि है, लेकिन ऐसा लगता है कि मंदिर का बहुत कम उल्लेख है। इसके बजाय लेखक उस तंबू पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है जो इसराइल के साथ था जब वे वादा किए गए देश के रास्ते पर जंगल में भटक रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने मंदिर के संदर्भ की कमी के कारण सुझाव दिया है कि शायद इब्रानियों को इसके नष्ट होने के दौरान या उससे पहले लिखा गया होगा। दूसरे शब्दों में, यह धारणा है कि कोई भी नया नियम दस्तावेज जिसमें 70 ईस्वी में मंदिर के विनाश जैसी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख नहीं है, उसे पहले लिखा गया होगा, क्योंकि जो कोई भी उसके माध्यम से जी रहा है या उसके तुरंत बाद लिख रहा है, उसने निश्चित रूप से एक घटना का उल्लेख किया होगा, जैसे 70 में यरूशलेम का विनाश। इसलिए कुछ लोग उस घटना का उपयोग कुछ दस्तावेजों की तारीख तय करने के प्रयास में करते हैं कि क्या वे यरूशलेम के विनाश के बारे में जानते हैं। हालांकि, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वह तारीख बरकरार रखें। आपको यह जानना होगा। फिर ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक दृष्टि से 70 यरूशलेम और परमेश्वर के लोगों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि, फिर से मैंने सुझाव दिया कि इब्रानियों द्वारा मंदिर का उल्लेख न करने का मुख्य कारण यह नहीं है कि इसे अभी तक नष्ट नहीं किया गया था। यह हो सकता था, लेकिन टैबरनेकल को संदर्भित करने का मुख्य कारण यह है कि वह जंगल की पीढ़ी को अपने प्राथमिक मॉडल के रूप में उपयोग कर रहा है। तो यह एक तारीख है जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप अवगत हों, 70 ईस्वी या 70 ईस्वी, और उस दौरान यरूशलेम और मंदिर का विनाश। ठीक है, खैर, आइए प्रारंभिक चर्च के मेल का एक और टुकड़ा खोलें, और यह फिर से बिल्कुल वैसा ही है जैसा जेम्स दिखता था। लेकिन ओह दिलचस्प, मैंने पहले कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसा कि हम देखेंगे, जेम्स की पुस्तक कई मायनों में अद्वितीय है। सबसे पहले, यद्यपि हमें जेम्स की पुस्तक के मूल्य का एहसास होता है और जब आप रुकते हैं और इसके बारे में सोचते हैं तो हम इससे परिचित होते हैं, लेकिन आखिरी बार आपने जेम्स की पुस्तक पर उपदेश या उपदेशों की श्रृंखला कब सुनी थी? हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है। लेकिन पहली बात जो हमें करनी चाहिए जब हम जेम्स की किताब को देखते हैं और पूछते हैं कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, यह पूछना है कि चर्च ने इसके साथ क्या किया है। जिस तरह से जेम्स की पुस्तक के साथ व्यवहार किया गया है, उसका एक स्रोत मार्टिन लूथर द्वारा जेम्स की पुस्तक के प्रति किए गए व्यवहार से मिलता है। और यदि आपको याद हो, जब हमने गैलाटियन और रोमनों के संबंध में मार्टिन लूथर को देखा, तो लूथर जेम्स और रोमनों की शिक्षाओं पर इतना केंद्रित था कि औचित्य केवल विश्वास के माध्यम से भगवान की कृपा से आता था और इसका मानवीय क्षमता से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि मनुष्य इतने पापी हैं, हम परमेश्वर का अनुग्रह पाने की आशा नहीं कर सकते। हम अपने अच्छे काम पर भरोसा करके पवित्र ईश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। इसलिए एकमात्र विकल्प ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना और यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना है। अब इस बात पर जोर देने के बाद कि आप लगभग कल्पना कर सकते हैं कि मार्टिन लूथर क्या सोचेंगे जब उनके पास जेम्स की किताब होगी, और जब उसने जेम्स की ओर देखा और वास्तव में इस अंश को पढ़ा, तो यह जेम्स अध्याय 2 है। वह कहता है कि आप देखते हैं कि कार्यों के साथ साथ विश्वास भी सक्रिय था। यह तो दिलचस्प है। और विश्वास कामों के द्वारा पूरा हुआ। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का वह कथन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और इब्राहिम को परमेश्वर का मित्र कहा गया। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति केवल अपने विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से न्यायसंगत होता है। तो आप लूथर की प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकते हैं, या शायद वह इस तरह के पाठ को पढ़ते समय क्या सोच रहा होगा और उसने जेम्स को कैसे प्रतिक्रिया दी होगी। जाहिर है, रोमनों पर उनके जोर के प्रकाश में और केवल विश्वास द्वारा औचित्य की पॉलीन शिक्षा पर किसी भी कार्य के अलावा, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि शायद लूथर की प्रतिक्रिया जब वह जेम्स के पास पहुंचती है और पढ़ती है कि हम न्यायसंगत नहीं हैं केवल विश्वास से परंतु कर्म से भी। इसलिए लूथर ने वास्तव में नए नियम से संबंधित जेम्स के मूल्य पर सवाल उठाया, क्योंकि चीजों की सतह पर यह पॉल की शिक्षा के साथ विरोधाभासी लग रहा था कि औचित्य केवल विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा होता है। और अब जेम्स कहते हैं कि औचित्य कार्यों से होता है, न कि केवल विश्वास से। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे कि जेम्स और पॉल एक दूसरे से कैसे संबंधित हो सकते हैं, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि कुछ अर्थों में लूथर की विरासत आज भी जारी है। यदि आप जेम्स के बारे में कुछ भी सुनते हैं, तो यह आम तौर पर अध्याय 1 तक ही सीमित रहेगा, जहां जेम्स परीक्षणों के बीच धैर्य और धीरज के बारे में बात करता है, और यह बाइबल का एक विषय है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और अच्छा लगता है, और कुछ ऐसा है जिसकी हमें आवश्यकता है। सुनो, लेकिन जेम्स के पास अन्य चीजें भी हैं, जैसे वह पाठ जो हमने अभी पढ़ा है। आप कार्यों से न्यायसंगत हैं, न कि केवल विश्वास से। या बाद में वह कहेगा कि विश्वास की प्रार्थना किसी को ठीक कर देती है। यदि आप बीमार हैं, तो बड़ों को प्रार्थना करने के लिए बुलाएं, और जब वे प्रार्थना करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। या वह कहते हैं, जेम्स कहते हैं, वह वही हैं जो कहते हैं, आप में से बहुतों को शिक्षक बनने पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि आप कठोर निर्णय के अधीन होंगे। अब मेरा मतलब है, हम इस तरह के बयानों से क्या मतलब निकालते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि जेम्स को शायद हमारा वोट मिलेगा, हाँ, यह एक ऐसी किताब है जो नए नियम में होनी चाहिए। ज्यादातर समय हम शायद इसे अनदेखा कर देते हैं और हम फिर से पॉल के पत्रों के सुरक्षित आधार पर चले जाते हैं। और मेरे मन में पॉल के खिलाफ कुछ भी नहीं है, बस अक्सर पॉल की शिक्षा एक फिल्टर बन जाती है जिसके माध्यम से हम बाकी सभी चीजों को मापते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह न केवल मार्टिन लूथर की विरासत के प्रकाश में सच है, बल्कि उस क्रम में भी जिसमें हमारा नया नियम प्रकट होता है, सुसमाचार के बाद है, जो हमें यीशु और उसके बाद अधिनियमों के बारे में इन सभी कहानियों को बताता है। सबसे बड़ा खंड, या मुझे सबसे बड़ा खंड नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे सामने आने वाले अधिकांश दस्तावेज, सबसे बड़ी संख्या में दस्तावेज पॉल की कलम से आते हैं। और जब तक आप पॉल में डूब नहीं जाते, तब तक आप अंतः इब्रानियों जेम्स तक नहीं पहुंच पाते। और इसलिए यह लगभग वैसा ही है जैसे आप पॉल के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसके आलोक में जेम्स या अन्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए न्यू टेस्टामेंट की व्यवस्था की गई है। और मार्टिन लूथर के प्रकाश में हमें नए नियम को इस तरह पढ़ना सिखाया गया है। पॉल, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो, यह लगभग वैसा ही है जैसे पॉल के पत्र एक लिटमस टेस्ट या एक लेंस बन जाते हैं जिसके माध्यम से हम शेष नए नियम को पढ़ते हैं। हालांकि यह दिलचस्प है कि हमारी कुछ प्रारंभिक चौथी शताब्दी, पांचवीं शताब्दी की न्यू टेस्टामेंट की पांडुलिपियां, जिनमें संपूर्ण न्यू टेस्टामेंट शामिल है, उनमें से कुछ में वास्तव में पॉल के पत्रों से पहले जेम्स का उल्लेख है। यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यू टेस्टामेंट को पढ़ना कैसा होगा, जेम्स को पढ़ने के बाद पॉल के पत्रों को पढ़ना, न कि इसके विपरीत। लेकिन फिर ऐसा लगता है जैसे हम पॉल के पत्रों से इतने परिचित और अभ्यस्त हो गए हैं कि जब हम जेम्स के पास पहुंचते हैं तो हमें या तो निश्चित नहीं होता कि इसके साथ क्या करना है, या हम जल्दी से इसे वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं जैसे हम हैं। पॉल के पत्र पढ़ने की आदत थी, लेकिन हम उस पर गौर करेंगे। हम जेम्स की शिक्षाओं और पॉल की शिक्षाओं के बीच कैसे सामंजस्य बिठाते हैं या कैसे संबंधित होते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आइए पत्र के बारे में थोड़ी बात करें और यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसे किसने लिखा, यह क्यों लिखा गया और यह क्या कर रहा है। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जो जानते हैं वह यह है कि जेम्स न्यू टेस्टामेंट से कम तीन संभावित उम्मीदवार हैं। जेम्स के लेखकत्व के लिए कम से कम तीन संभावित उम्मीदवार हैं। जिन दो याकूबों के बारे में हम जानते हैं वे यीशु के प्रेरित थे। तीसरे जेम्स, जिसके बारे में हम प्रेरितों के काम की पुस्तक से जानते हैं, वह यीशु का भाई था जिसे यरूशलेम चर्च के नेता के रूप में भी जाना जाता था। आपने उसके बारे में अधिनियम 12, अधिनियम 15 और शायद अधिनियम में एक या दो अन्य स्थानों पर पढ़ा है। चर्च के इतिहास ने मूल रूप से इस पुस्तक के पाठक या लेखकत्व को यीशु के भाई जेम्स को सौंपने का समर्थन और भारी समर्थन किया है। और एक अच्छे कारण के लिए, जेम्स यीशु के रिश्तेदारों या यीशु के भाई में से एक होने के नाते और उसके शीर्ष पर जेरूसलम चर्च में एक नेता होने के नाते उनके पत्र को नए नियम के धर्म ग्रंथ के रूप में माने जाने के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाया जाएगा, नए नियम के सिद्धांत में शामिल। इसलिए मैं कोई तर्क या कुछ भी नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन केवल यह मानता हूँ कि संभवतः लेखक जिस जेम्स का उल्लेख इस पुस्तक की पहली कविता में किया गया है वह यीशु का भाई था और जो पहली शताब्दी में नेता बन गया था जेरूसलम चर्च, जैसा कि हम अधिनियमों की पुस्तक में पढ़ते हैं। जेम्स के पाठक कौन हैं? वास्तव में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जेम्स को इब्रानियों के साथ पत्रों के संग्रह में सामान्य पत्रों में से एक के रूप में क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जेम्स के पास भी काफी व्यापक पाठक वर्ग है। यह शुरू होता है, जेम्स भगवान और प्रभु यीशु मसीह का सेवक, यह पहली सदी के एक विशिष्ट पत्र की तरह शुरू होता है, लेकिन फिर यह कहता है, फैलाव में 12 जनजातियों को नमस्कार। मुख्य बात यह समझना है कि 12 जनजातियां कौन हैं, क्योंकि शेष पत्र में पाठकों के लिए कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं है। तो 12 जनजातियां कौन हैं? कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि हम इस संदर्भ को अधिक रूपक के रूप में लें, अर्थात उसी तरह जैसे कि नए नियम में चर्च को संदर्भित करने के लिए पुराने नियम में इसराइल को संदर्भित करने वाली भाषा का उपयोग किया जाता है। आप इसे कई पुस्तकों में पाते हैं। उदाहरण के लिए आप पाते हैं कि हमने पहले ही देखा है कि पॉल ने मसीह में मौजूद किसी भी व्यक्ति को इब्राहिम के वंश के रूप में लेबल किया था। इसलिए उसने वह भाषा ली है जो पुराने नियम में भौतिक इसराइल को संदर्भित करती थी और अब इसे चर्च के यीशु मसीह के माध्यम से लागू करता है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह सच है कि फैलाव से 12 जनजातियों का संदर्भ प्रतीकात्मक रूप से चर्च का संदर्भ है, भगवान के सभी लोगों के लिए जो मसीह के माध्यम से अब नए इसराइल हैं। हालांकि दूसरा विकल्प, जिसकी संभवतः अधिक संभावना है, यह है कि यह यहूदी ईसाइयों का वास्तविक भौतिक या शाब्दिक संदर्भ है जो वास्तव में बिखरे हुए हैं या फैल गए हैं या अपनी मातृभूमि जो कि यरूशलेम है से हटा दिए गए हैं। तो ये हैं, जेम्स तब यहूदी ईसाइयों को संबोधित कर रहे हैं जो फिर से शारीरिक रूप से अपनी मातृभूमि से यरूशलेम से अलग और निकाले गए हैं। वे एक भौगोलिक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बिखरे हुए हैं या एक अर्थ में अपनी मातृभूमि से निर्वासित हैं। और फिर जेम्स एक पत्र भेजता है जो आम तौर पर इस समूह को संबोधित करेगा। एक और बात है जो हम निश्चित रूप से इस समूह के बारे में जान सकते हैं, मुझे लगता है, वह यह है कि पूरे जेम्स में गरीबी और धन के संदर्भों की संख्या के कारण सबसे अधिक संभावना है कि जेम्स एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली को संबोधित कर रहे हैं जहां उनके कई पाठक खुद को ऐसी स्थितियों में पाते हैं, उदाहरण के लिए गरीबी, यहां तक कि अमीर जमींदारों द्वारा फायदा उठाए जाने की हद तक। तो शायद जातीय रूप से यहूदी होने के अलावा जो यरूशलेम से दूर फैले हुए हैं और अपनी मातृभूमि से अलग हैं, उनमें से कई अत्यधिक गरीबी की स्थितियों में मौजूद हैं, जहां उन्हें अक्सर अमीर मालिकों और अमीर जमींदारों के हाथों दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। और धनी स्वामी, और आप इसे कई संदर्भों में देखेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए अध्याय 1, लेकिन दुर्भाग्य से ये संदर्भ आम तौर पर फिर से इस बहस पर हावी हो जाते हैं कि क्या जेम्स औचित्य पर पॉल से सहमत है। जब पॉल कहता है कि आप कर्मों से न्याय संगत हैं, विश्वास से नहीं, जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जो भूल जाते हैं वह गरीबों और गरीबी की स्थिति वाले लोगों के उपचार के संदर्भ में है। इसलिए उदाहरण के लिए अध्याय 1 के अंत में, अध्याय 1 में जेम्स कहते हैं कि यदि कोई सोचता है कि वे धार्मिक हैं और वे अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाते बल्कि अपने दिलों को धोखा देते हैं तो उनका धर्म बेकार है। परमपिता परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक धर्म यह है कि अनाथों और विधवाओं के संकट में उनकी देखभाल की जाए और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखा जाए। तो ध्यान दें कि उन लोगों की देखभाल पर जोर दिया जाता है जो गरीब हैं और जिनका प्रतिनिधित्व कम है। बाद में अध्याय 2 में फिर से, इससे पहले कि जेम्स विश्वास और कार्यों की इस चर्चा में आए, और कार्यों के अलावा विश्वास मर चुका है और आप केवल विश्वास से नहीं बल्कि कार्यों से उचित ठहराए जाते हैं, इससे पहले कि वह कभी ऐसा कहे, जेम्स यह कहकर इसका परिचय देता है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम कहते हो कि तुम में विश्वास तो है परंतु काम नहीं तो क्या फायदा, क्या वह विश्वास तुम्हें बचा सकता है? यदि किसी भाई या बहन के पास वस्त्र न हो व प्रतिदिन का भोजन न हो और कोई उनसे कहे शांति से जाओ, गर्म रहो और भरपेट भोजन करो, परंतु उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी न करो, तो इससे क्या लाभ? तो फिर जेम्स बार बार अमीरी और गरीबी के इस विषय को सामने लाता है, जैसे कि उसके कम से कम कुछ पाठक अत्यधिक गरीबी की स्थिति में हैं और यहाँ तक कि गरीबों द्वारा उनका फायदा भी उठाया जा रहा है। और शायद फिर से उनके कुछ पाठक उन लोगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं जो अत्यधिक गरीबी की स्थिति में हैं। दूसरे जेम्स के बारे में एक और बात यरूशलेम से फैलाव के लिए एक पत्र है। जब उनसे पूछा गया कि पहली शताब्दी के पत्र के अलावा जेम्स किस प्रकार का पत्र हो सकता है, जो कि यह है, तो यह एक पत्र की तरह ही शुरू और समाप्त होता है, हालांकि यह बीच में पॉल के कुछ पत्रों की तरह विकसित नहीं होता है जिनका हम उपयोग करते हैं को। जैसा कि किसी ने सुझाव दिया, जेम्स उस चीज से मिलता जुलता हो सकता है जिसे फैलाव के पत्र के रूप में जाना जाता है। हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, हालांकि वे बड़े कार्यों में अंतर्निहित हैं। यरूशलेम में एक नेता द्वारा बिखरे हुए यहूदियों को एक पत्र भेजना, जो बिखरे हुए लोगों के लिए एक पत्र की तरह है। यरूशलेम में यहूदियों का एक अधिकारी या नेता अब एक पत्र लिखना, यरूशलेम शहर के बाहर रहने वाले लोगों को संबोधित करने और पढ़ने के लिए एक आधिकारिक पत्र। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि जेम्स उस पद्धति का अनुसरण करता है कि जेम्स फैलाव के लिए एक पत्र है, जेम्स एक नेता है, यरूशलेम चर्च में एक आधिकारिक नेता है जो अब बिखरे हुए यहूदियों के लिए एक पत्र लिख रहा है। और यह निश्चित रूप से श्लोक एक में फिट होगा, जहां जेम्स खुद को यीशु मसीह के सेवक के रूप में पहचानता है, जो अब यहूदियों को 12 जनजातियों को लिख रहा है जो बिखरे हुए हैं। और इसलिए किसी ने इस कारण से सुझाव दिया, जेम्स को फैलाव के लिए एक पत्र का लेबल दिया जा सकता है। इस विचार का पालन करते हुए फिर से एक यहूदी नेता जो अधिकार की स्थिति में है और अब यरूशलेम से अलग और बाहर के लोगों को लिख रहा है, शायद दर्द का अनुभव कर रहा है और मातृभूमि से अलग होने की कठिनाई, अपने धर्म के केंद्र, भगवान के निवास स्थान और अपने लोगों पर उनके आशीर्वाद से अलग होने की कठिनाई। यह संभव है, मुझे नहीं पता। यह निर्धारित करना कठिन है कि क्या वह वास्तव में एक आधिकारिक पत्र प्रपत्र था या पत्र का एक रूप था जिसे पाठकों ने पहचान लिया होगा और समझ लिया होगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से एक संभावना है। लेकिन कम से कम जेम्स पहली सदी का पत्र लिखने की काफी विशिष्ट परंपरा का पालन कर रहा है। जेम्स के बारे में एक और बात जो हम जानते हैं, हालांकि जेम्स अपने पूरे पत्र में कई स्थानों पर वास्तव में पुराने नियम और यहूदी लौकिक साहित्य या ज्ञान साहित्य से मिलता जुलता है, जैसा कि नीतिवचन में पाया जाता है। जेम्स के कुछ छंद या जेम्स के विशिष्ट कथनों में लौकिक प्रकार की गुणवत्ता और रूप है। एक व्यक्ति, हालांकि मैं गलत सोचता हूँ, एक व्यक्ति ने तो एक बार जेम्स को मोतियों के एक समूह के साथ एक माला के रूप में वर्णित किया था। कुछ लोग लगभग वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आप नीतिवचनों में पाते हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि नीतिवचनों के अनुभागों में इस बात पर विवाद रहा है कि लेखक ऐसा करता है या नहीं। लेकिन कभी कभी आप नीतिवचन पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि वह अलग अलग विषयों पर कूद रहा है। और किसी ने सुझाव दिया कि जेम्स ऐसा कर रहा है जैसे एक ज्ञान विषय से दूसरे ज्ञान विषय पर कूदना। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जेम्स द्वारा उठाए गए कई विषय ऐसे विषय हैं जो आपको नीतिवचन और अन्य ज्ञान प्रकार के साहित्य में मिलते हैं, जैसे कि भाषण पर जेम्स के निर्देश, किसी के भाषण से सावधान रहना, क्रोध पर उनके निर्देश, गरीबी और धन पर उनके निर्देश, गंभीर प्रयास। वे सभी ऐसे विषय हैं जो नीतिवचन या यहूदी प्रकार के ज्ञान की तरह किसी पुस्तक में उभरते हैं। तो यह काफी सामान्य दृष्टिकोण है। एक काफी सामान्य दृष्टिकोण यह है कि जेम्स पुराने नियम के ज्ञान या यहूदी ज्ञान के प्रकार के साहित्य से काफी मिलता जुलता है, हालांकि शायद यही एकमात्र चीज नहीं है जो इससे मिलती जुलती है, लेकिन निश्चित रूप से इसकी शिक्षाओं और कुछ विषयों और इसे व्यक्त करने के तरीके में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसा कि आप यहूदी ज्ञान प्रकार के साहित्य में पाते हैं, तो इन सबके प्रकाश में जेम्स का उद्देश्य क्या है या जेम्स क्यों लिखता है? जेम्स तब ईसाइयों को दुनिया में अपने विश्वास को बुद्धिमानी से जीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिखते हैं, और फिर थोड़ा और विवरण जोड़ने के लिए जेम्स यहूदी ईसाइयों को संबोधित करते हैं जो बिखरे हुए हैं और अपनी मातृभूमि से अलग हैं, यरूशलेम से अलग हैं। जेम्स अब उन्हें निर्देश देने और उन्हें अपने विश्वास को बुद्धिमानी से जीने और बुद्धिमानी से ज्ञान विचार लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिखते हैं। इस दुनिया में अब जहां तक बात है कि जेम्स को एक साथ कैसे रखा जाता है, जेम्स की योजना, जेम्स को कैसे संरचित या व्यवस्थित किया जा सकता है, और फिर मुझे आपको कोई विस्तृत रूपरेखा या कुछ भी देने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने तीन थीम या विचार सूचीबद्ध किए हैं। पहला परीक्षण या सहन शक्ति का विषय है, जिसे परीक्षणों के माध्यम से परखा और सहन किया जा रहा है। दूसरा है गरीबी और उदारता। इसलिए जेम्स गरीबी और धन के मुद्दे को संबोधित करते हैं, लेकिन ऐसा करने में उदारता को प्रोत्साहित करते हैं। और अंत में ज्ञान और वाणी का विषय। पुनः वे सभी विषय जिन्हें आप नीतिवचन जैसी किसी पुस्तक में उभरते हुए पाते हैं। तो बुद्धि और वाणी। दिलचस्प बात यह है कि जेम्स पहले अध्याय में क्या करता है, पहले 8, 9, 10 श्लोक या इसी तरह जेम्स इन तीनों विषयों का परिचय देगा, और फिर वह पूरी किताब में उन तीन विषयों पर दोबारा गौर करेगा। ये वही तीन विषय हैं, और इन्हें अध्याय 1 में पेश किया गया है, लेकिन ये बार बार दोहराए जाते हैं। जेम्स ने उन्हें पूरी किताब में 2 या 3 बार उठाया और विस्तार से उनका विस्तार किया। इसलिए उदाहरण के लिए पहला अध्याय सुने और देखें कि क्या आप अपने नोट्स से इन तीनों की पहचान कर सकते हैं। फिर परीक्षाओं के बीच में परीक्षण और धीरज, गरीबी और उदारता, गरीबी और अमीरी का विषय, और फिर अंतिम है ज्ञान और वाणी। तो सबसे पहले वह शुरू होता है अपने परिचय के बाद, जेम्स भगवान और प्रभु यीशु मसीह के सेवक और 12 जनजातियों और उनके फैलाव। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, जब भी तुम किसी भी प्रकार की परीक्षा का सामना करो तो इसे आनंद के अलावा और कुछ मत समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास का परीक्षण धीरज पैदा करता है, और धीरज को अपना पूरा प्रभाव डालने दो ताकि तुम परिपक्व और पूर्ण हो जाओ और किसी भी चीज की कमी न हो। तो क्या आप परीक्षणों के बीच परीक्षण और धीरज का विषय देखते हैं? अब यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो तुम्हें परमेश्वर से, जो उदारता और कृतघ्नता से सब कुछ देता है, मांगना चाहिए और वह तुम्हें दी जाएगी। परंतु संदेह करके नहीं, विश्वास से मांगो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। संदेह करने वाले को दोहरे मन वाला और हर तरह से अस्थिर होने के कारण भगवान से कुछ भी प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या आपने ज्ञान और वाणी, विशेष रूप से प्रार्थना के संदर्भ में वाणी के विषय को समझा? अंत में अंतिम छंद 9 और 10, आस्तिक ईसाई जो नीच है ऊंचे होने पर घमंड करे और अमीर को नीचा होने पर घमंड करने दे, क्योंकि अमीर खेत में फूल की तरह गायब हो जाएगा, क्योंकि सूर्य अपनी चिलचिलाती धूप के साथ उगता है और खेत को सुखा देता है, उसका फूल झड़ जाता है और उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार अमीर भी अपने व्यस्त जीवन के बीच में सूख जाएंगे। तो उन सभी तीन विषयों पर ध्यान दें, परीक्षण और धीरज, और फिर बुद्धि और वाणी, और गरीबी और धन, या गरीबी और धन और उदारता। जेम्स की पूरी किताब में इन तीनों विषयों पर 2 या 3 बार दोबारा गौर किया जाएगा। अभी मैं आपसे यह नहीं पूछने जा रहा हूँ कि वास्तव में कौन से छंद और कौन से अध्याय हैं, लेकिन जब आप जेम्स के बाकी हिस्सों को पढ़ेंगे तो सावधान रहें, ये तीन विषय बाकी किताब के माध्यम से चक्रित होंगे क्योंकि जेम्स उन पर विस्तार करता है और उनका उपयोग करता है अपने पाठकों के जीवन की विशिष्ट स्थितियों को संबोधित करें। हाँ, वे वास्तव में आम तौर पर बड़े टुकड़ों में घटित होंगे। तो अब वह विषय लेंगे, उदाहरण के लिए परीक्षण और सहन शक्ति का, और उस पर काफी लंबे खंड में विचार करेंगे और फिर अगले पर आगे बढ़ेंगे, धन और गरीबी या ऐसा ही कुछ, या ज्ञान और भाषण। अध्याय 3 और 4 में ज्ञान और वाणी पर एक लंबा खंड है। इसलिए उदाहरण के लिए मैंने श्लोक 10 के साथ समाप्त किया, उसी तरह अमीरों के साथ अपने व्यस्त जीवन के बीच वे मुरझा जाएंगे। अब वह तीन विषयों को चुनना और उनका पुनर्चक्रण करना शुरू करने जा रहा है। तो यहाँ अगला श्लोक है, धन्य है वह जो परीक्षा में धीरज धरता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति परीक्षा में खरा उतरा है और जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उन लोगों से की है जो उससे प्रेम करते हैं। परखे जाने वाला कोई न कहे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर बुराई से परखा नहीं जाता और वह आप ही किसी की परीक्षा नहीं करता। परंतु कोई तब प्रलोभित होता है जब वे अपनी इच्छाओं के कारण भटक जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर अध्याय के अंत तक लेखक को श्लोक 26 और 27 याद आते हैं। एक धर्म जो भगवान के सामने शुद्ध और निष्कलंक है वह यह है, अनाथों और विधवाओं की देखभाल करना। और फिर अध्याय 2 में वह इस लंबे खंड का परिचय देंगे कि वे गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए आम तौर पर अब वह पूरी किताब के बाकी हिस्सों में इन तीन विषयों पर बहुत बड़े खंडों में चर्चा करेगा। फिर उन विषयों को देखना और पूछना दिलचस्प होगा कि लेखक ने उन पर जोर क्यों दिया। क्या ये उसके पाठक वर्ग की किसी स्थिति के कारण है? मैंने पहले ही सुझाव दिया है कि सबसे अधिक संभावना है कि सामाजिक आर्थिक रूप से ज्ञान और धन पर जोर, या मुझे खेद है, गरीबी और धन और उदारता शायद ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहां जेम्स के कम कुछ पाठक गरीबी की स्थिति में हैं और शायद दुर्व्यवहार के अधीन भी हैं। अमीरों और अन्य लोगों को दया दिखाने और इन व्यक्तियों को उनकी संपत्ति से मदद करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्य स्थितियों में से कोई भी प्रतिबिंबित होती है, या इन अन्य विषयों की कोई अन्य शिक्षा चर्च के भीतर कुछ स्थितियों को प्रतिबिंबित करती है जिन्हें जैन संबोधित कर रहे हैं, यहूदी ईसाई हैं जिन्हें वह संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, अब तक कोई प्रश्न? जेम्स के बारे में कोई अन्य प्रश्न? कुछ अन्य चीजें हैं जिन पर हम गौर करेंगे। उनमें से एक, मैंने पहले ही कहा है कि जेम्स यहूदी ज्ञान प्रकार के साहित्य से काफी समानता रखता है, जैसा कि नीतिवचन और कुछ अन्य यहूदी ज्ञान साहित्य में पाया जाता है। जेम्स की एक और विशेषता जिसके बारे में आपको जल्द ही पता चल जाएगा, वह यह है कि जेम्स भी, और यदि जेम्स को यीशु के भाई के रूप में पहचानना सही है तो यह उसके लिए ऐसा करने का और भी अधिक कारण हो सकता है, लेकिन कई स्थानों पर जेम्स की शिक्षाओं से पता चलता है यीशु की अपनी शिक्षाओं से एक उल्लेखनीय समानता, इस हद तक कि जेम्स और यीशु की शिक्षाओं के बीच समानताएं जेम्स के लिए यीशु की शिक्षाओं पर किसी प्रकार की निर्भरता का सुझाव देती प्रतीत होती हैं। हमें शायद यह नहीं सोचना चाहिए कि जेम्स के पास मैथ्यू, मार्क, ल्यूक या जॉन 4 सुसमाचारों में से किसी तक पहुंच थी। फिर यीशु की कई शिक्षाएं बहुत पहले ही मौखिक रूप से प्रसारित हो गई थीं, शायद उनमें से कुछ लिखित रूप में थीं, और लोगों को लिखित सुसमाचारों के अलावा यीशु की शिक्षाओं तक पहुँच प्राप्त थी। इसलिए हमें यह मानने की जरूरत नहीं है कि जेम्स ने 4 सुसमाचारों में से कोई भी पढ़ा था या उन तक उसकी पहुंच थी, लेकिन निश्चित रूप से यीशु की शिक्षाओं तक उसकी पहुंच थी। लेकिन फिर समानताएं इस प्रकृति की हैं कि संभवतः जेम्स यीशु की शिक्षा को जानता था और जानबूझकर यीशु की शिक्षा पर भरोसा कर रहा था। दूसरी बात जो आप नोटिस करेंगे, मैं आपको कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं जो अधिक स्पष्ट प्रतीत होते हैं। दूसरी बात जो आप देखेंगे वह यह है कि उनमें से लगभग सभी पहाड़ी उपदेश से निकले हैं, पहाड़ी उपदेश पर यीशु की शिक्षा। कुछ अन्य लोग भी हैं जो इससे बाहर जाते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनमें से अधिकतर पहाड़ी उपदेश से बाहर आते हैं, जैसा कि मैथ्यू 5-7 में पाया जाता है। इसलिए उदाहरण के लिए जेम्स और जीसस, अध्याय 1:12 में जेम्स कहते हैं, और फिर इसमें, जिसे मैक्रिज्म या आशीर्वाद कथन के रूप में जाना जाता है, धन्य हैं वे लोग जिन्हें आप यीशु की शिक्षाओं में अक्सर उस प्रकार का कथन पाते हैं, लेकिन जेम्स कहते हैं, धन्य हैं वे जो लोग परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, क्योंकि जब वे धीरज धरेंगे तो जीवन का मुकुट प्राप्त करेंगे। अब ध्यान दें कि यीशु उन धन्य गुणों में से एक में क्या कहते हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, मत्ती 5-10 के तथाकथित आनंद, आप धन्य हैं जब लोग धार्मिकता के कारण आपका अपमान करते हैं और सताते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो मुख्य बात यह है कि इनाम के वादे से प्रेरित होकर उत्पीड़न सहने वाले को आशीर्वाद देने के विचार का विषय है। जेम्स के मामले में यह जीवन का मुकुट है। यीशु के मामले में स्वर्ग का राज्य, जिसके बारे में मुझे लगता है कि हम मूल रूप से उसी चीज की बात कर रहे हैं। और इसका क्या? अध्याय 2 में जेम्स गरीबी और धन के विषयों के चक्रों में से एक को संबोधित करता है। जेम्स कहता है, क्या भगवान ने दुनिया की नजर में गरीबों को विश्वास में समृद्ध होने और भगवान के राज्य को विरासत में पाने के लिए नहीं चुना है? पुनः मैथ्यू 5-3, धन्य हैं वे जो आत्मा में गरीब हैं। ल्यूक के पास आत्मा नहीं है, ल्यूक ने सिर्फ गरीबों को आशीर्वाद दिया है, लेकिन मैं मैथ्यू के संस्करण का उपयोग कर रहा हूँ, धन्य हैं आत्मा में गरीब, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अध्याय 5 में फिर से धन और गरीबी और उदारता का विषय फिर से अध्याय 5 में वापस आता है, और जेम्स कहते हैं, वह अमीर शायद अमीर जमींदारों को संबोधित कर रहे हैं जो गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनसे चोरी भी कर रहे हैं। वह कहता है, तेरा धन सड़ गया है, तेरे वस्त्र पतंगों ने खा लिए हैं, तेरा सोना और चांदी जीर्ण हो गए हैं, क्योंकि तूने अंतिम दिनों में धन इकट्ठा किया है। मैथ्यू में यीशु ने कहा, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो जिसे कीट और जंग नष्ट कर सकते हैं। इसलिए भौतिक खजाना जमा करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए यीशु बाद में कहेंगे, इसके बजाय स्वर्ग में अपने लिए खजाना जमा करो। आप उस श्लोक को जानते हैं, लेकिन उसके पहले यह चेतावनी दी गई है कि भौतिक खजाने का भंडारण न करें, क्योंकि पतंगे और जंग इसे नष्ट कर सकते हैं। अध्याय 5 में जेम्स उसी चीज के विरुद्ध चेतावनी दे रहा है। एक और अध्याय 10 में जेम्स अब बदलता है और फिर से दृढ़ता और धीरज के विषय पर आ जाता है। वह कहते हैं, भाइयों और बहनों, पीड़ा में धैर्य के उदाहरण के रूप में पीड़ा के बीच में भविष्यवक्ताओं को ले या उन भविष्यवक्ताओं को देखें जिन्होंने प्रभु के नाम पर बात की। इसलिए जेम्स पुराने नियम के कुछ भविष्यवक्ताओं की ओर इशारा करते हैं जिन्हें अपने उपदेशों के कारण शारीरिक रूप से कष्ट सहना पड़ा, विशेषकर इसराइल के विरुद्ध बोलने के कारण। अब यदि आप मैथ्यू अध्याय 5 को फिर से पहाड़ी उपदेश में याद करते हैं तो आनंदित हों और खुश हों, क्योंकि स्वर्ग में आपका इनाम महान है, क्योंकि उन्होंने उसी तरह से उन भविष्यवक्ताओं को सताया था जो आपसे पहले आए थे। अब अन्य सभी प्रकार के उदाहरण हैं। मुझे लगता है कि यह आखिरी है जो मैंने दिया था। हाँ, वह आखिरी है जो मैंने दिया था। इसे कई गुना किया जा सकता है और भी बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ उतने आश्वस्त करने वाले नहीं हैं। यदि हमारे पास इनमें से केवल एक उदाहरण होता तो आप यह प्रश्न करने में सक्षम हो सकते हैं कि क्या जेम्स वास्तव में विशेष रूप से या सीधे या अनजाने में यीशु की शिक्षा पर भरोसा कर रहा था। लेकिन तथ्य यह है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जो विषयगत और संरचनात्मक रूप से यीशु के कथनों से मिलते जुलते हैं। विशेष रूप से पहाड़ी उपदेश से यह पता चलता है कि सबसे अधिक संभावना है कि जेम्स यीशु की अपनी शिक्षा पर भरोसा कर रहा था और उससे उधार ले रहा था, क्योंकि वह अब अपने पाठकों को निर्देश देता है। तो फिर ज्ञान साहित्य के साथ, यहूदी ज्ञान साहित्य जेम्स की अधिकांश शिक्षाओं के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यीशु की अपनी शिक्षा है, विशेष रूप से पर्वत पर उपदेश में पाई गई, जेम्स के निर्देश में भी भूमिका निभाती है। फिर से मैं यह लागू करना चाहता हूं कि मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि जेम्स के पास मैथ्यू की एक प्रति थी। सबसे अधिक संभावना है कि उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जेम्स अभी भी यीशु की शिक्षाओं के बारे में बहुत जागरूक है और यीशु ने जो सिखाया है, जैसे कि पहाड़ी उपदेश में, उसकी पहुंच उस तक है, और अब वह इसे इन यहूदी ईसाइयों के लिए अपने निर्देशों में लागू करता है जो तितर बितर हो गए हैं और अपनी मातृभूमि से अलग हो गए हैं। ठीक है, मैं बस अगले अंक का परिचय देना चाहता हूं, और वह यह है कि हम बुधवार को इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे, और वह जेम्स की शिक्षा और पॉल की शिक्षा के बीच का संबंध है। मैं इसे किसी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहता और यह नहीं कहना चाहता कि हम इनमें सामंजस्य बिठाएंगे, क्योंकि आम तौर पर इसका मतलब यह होता है कि जेम्स को बिल्कुल पॉल की तरह बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन साथ ही मैं आश्वस्त हूं कि ये दोनों शिक्षाएं और परंपराएं भले ही कितनी भी भिन्न क्यों न हों, अंततः वे एक दूसरे का खंडन नहीं करती हैं या वे एक दूसरे से असहमत नहीं हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रही हैं और कैसे वे अपने लोगों के लिए परमेश्वर के संपूर्ण रहस्योद्घाटन के पूरक पहलुओं को प्रदान करते हैं। लेकिन फिर से याद दिलाने के लिए, जो हमने कई बार देखा है उसे दोहराने के लिए, उदाहरण के लिए पॉल के पत्रों में, यदि आपको याद है, उदाहरण के लिए गलातियों की पुस्तक गलातियों अध्याय 2 जैसे पाठ, और मुझे लगता है कि श्लोक 15 है, मुझे जो श्लोक चाहिए। गलातियों अध्याय 2 और 15, वह इफिसियों है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह सही नहीं लग रहा था। ये रहा श्लोक 16, फिर भी हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति कानून के कार्यों से नहीं बल्कि यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से धर्मी ठहराया जाता है। तो क्या आपने सुना, हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति कानून के कार्यों से नहीं बल्कि यीशु मसीह में विश्वास से उचित ठहराया जाता है। और पौलुस रोमियो की पुस्तक में भी ऐसा ही कुछ कहता है। वे किताबें हैं जिन्हें मार्टिन लूथर ने जब्त कर लिया और आज तक एक विरासत छोड़ी है कि हम अक्सर पॉल को कैसे पढ़ते हैं। लेकिन फिर यहां जेम्स के शब्द हैं। मैं इसे एक बार और पढ़ूंगा ताकि आप औपचारिक रूप से तनाव और मौखिक रूप से तनाव को समझ सकें। हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति कानून के कार्यों से नहीं बल्कि यीशु मसीह में विश्वास से उचित ठहराया जाता है। अब यहाँ जेम्स, आप देखते हैं, एक व्यक्ति कर्मों से न्यायसंगत होता है न कि केवल विश्वास से। तो आपको वहां लगभग संघर्ष करना पड़ेगा। कौन सा देता है? कौन जीतता है? कौन हार मानने वाला है? या क्या कोई और तरीका है जिससे हमें इसे पढ़ना चाहिए? बुधवार को मैं इस तनाव का थोड़ा और पता लगाना चाहता हूं और शायद यह समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि अगर हमें इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है तो क्या हम इस बात का हिसाब लगा सकते हैं कि जेम्स और पॉल ने खुद को गैलाटियंस जैसी किताब में इस तरह से क्यों व्यक्त किया? और जेम्स, तो मैं तुमसे बुधवार को मिलूंगा। यह न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, इब्रानियों और जेम्स पर व्याख्यान संख्या 29 था।